ओम शांति। रूस के एक महान लेखक इवान टर्गेनियव ने एक बहुत सुंदर कहानी लिखी है, जिस कहानी का शीर्षक है द ग्रेट फूल, एक महान मूर्ख, जिसमें दिखाया है कि एक व्यक्ति है जिसको बचपन से सभी लोग मूर्ख समझते हैं और वो बात उसके मन में इतनी अंदर घुस गई है कि उसका अपना कोई आत्मविश्वास नहीं। वो जो भी करता है सब लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, यहां तक कि उसके माँ बाप भी बचपन से ही उसे फूल फूल मूर्ख मूर्ख कहते हैं। वो जो भी बात करता है, जो भी कार्य करता है, जो भी सजेशन देता है, प्लानिंग देता है, कुछ भी करता है, सभी लोग उसको उस बात के लिए मूर्ख कहते हैं, तो बहुत दुखी हो जाता है। वो इतना दुखी हो जाता है कि सोचता है अब क्या करूं, मेरा इस जीवन में कोई अर्थ नहीं। तो वो एक दिन सुनता है कि उस गांव में एक संत आए हैं और वह व्यक्ति उस संत के पास जाता है और कहता है कि मैं क्या करूं, सब लोग मुझे इडियट फूल इस तरह से जब देखो तब पुकारते रहते हैं। तो वो संत उसे एक युक्ति बताते हैं। वो कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कहे कि कोई फला चीज बहुत अच्छी है तो तुम कहना बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्या प्रूफ है। कोई अगर कहे सूरज कितना अच्छा है, कहना बिल्कुल ही खराब है। कोई अगर कहे ये किताब बहुत अच्छी है तो तुम कहना इसमें क्या अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। कोई अगर कहे यह कविता बहुत अच्छी है तो तुम कहना यह कविता तो एकदम फालतू है, बच्चों की है एकदम, इसमें कुछ भी नहीं है। तो संत उसको ये युक्ति बताते हैं और संत चले जाते हैं। तो वो व्यक्ति इसके बाद जो भी चीजें वो सुनता है जैसे उस संत ने कहा था वैसे ही करता है। कोई कहता है यह जगह बहुत ही अच्छी है, सबने जाना चाहिए, वो कहता है कुछ अच्छी नहीं है, क्या है इस जगह में, क्या प्रूफ है कि वो जगह अच्छी है। तो सब लोग एकदम से चुप हो जाते। जो लोग अब तक उसको कहते तुम मूर्ख हो, आज एकदम कुछ कह नहीं पाते और सबको लगता है ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। कोई कहता है ये किताब बहुत अच्छी है, वो कहता है ये किताब बिल्कुल खराब है। तो लोगों को लगता है अरे बाप रे, ये तो एकदम ज्ञानी बन गया। तो धीरे 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 वो एकदम ही ज्ञानी बन जाते हैं। जो भी बात कहेगा वो हमेशा एक ही बात कहता है ये खराब। जो सारे लोग उसके माँ बाप रिश्ते संबंधी रिश्तेदार सब लोग अब उसे बहुत बच के उसके साथ बात करते हैं। तो इस तरह से वो इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि धीरे धीरे लोग समझते हैं ये सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, द वाइस मैन। कुछ समय के बाद वो संत उस गांव में वापस आते हैं और वो संत के पास लोग आते हैं और कहते हैं हमारे गांव में एक बहुत ज्ञानी पुरुष है, आप तो संत हो, आप उस ज्ञानी पुरुष से जरूर मिलना चाहिए। तो वो संत के को उस व्यक्ति के पास लेके आते हैं। तो वो वही व्यक्ति होता है जिसको पहले लोग मूर्ख मूर्ख कहते रहते हैं। तो वो व्यक्ति संत से कहता है आपने जो बताई युक्ति एकदम एक्यूरेट थी, जैसे आपने बताया बस वैसे ही मैंने किया, जब भी मुझे कोई कोई बात करता है तो मैं कहता हूं इसका प्रूफ क्या है, और धीरे धीरे देखो क्या हो गया, मैं कितना महान बन गया इस शहर में, ज्ञानी बन गया। तो वो संत कहता है बहुत अच्छा। तो व्यक्ति पूछता है आपने ये कैसे सीखा, वो संत कहते हैं जैसे मैंने खुद किया, मैं भी संत ऐसे ही बनाऊं। जो भी दूसरा कुछ कहता है डिनाय करना, मना करना, प्रूफ मांगना, और ऐसे करते करते मैं भी बहुत बड़ा संत इसी युक्ति से बना हूं। तो इस तरह विदेश की ये छोटी सी कहानी है कि जिसमें एक व्यक्ति जो एकदम मूर्ख होता है एक युक्ति से महाज्ञानी बन जाता है। उसमें यह भी दिखाया है कि मनुष्य संसार के किसको ज्ञानी समझते हैं और किसको मूर्ख समझते हैं। जो व्यक्ति ये दिखाए कि ये तो कुछ भी नहीं, उसको बड़ा ज्ञानी समझते हैं। जो व्यक्ति ये दिखाता है कि मुझे कुछ पता नहीं, उसे और ही नीचे दबाते हैं। ये कहानी हमने बहुत पहले कभी सुनी थी। एक मूर्ख कैसे ज्ञानी बन जाता है, और कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। जो बहुत ज्ञानी होता है लोग उसे मूर्ख समझ लेते हैं। जैसे सुकरात, यूनान का सोक्रेटिस, अतिशय ज्ञानी व्यक्ति, परंतु लोगों ने उसे समझ नहीं पाए और उसे जहर दे दिया और मार दिया। हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में भी हम में से ऐसे कई हैं जो ऐसी कुछ कुछ बातें करते हैं कि महाज्ञानी बनने की बजाय हम कभी कभी महामूर्ख बन जाते हैं, और जो पहले महामूर्ख थे, मूढ़ थे, अज्ञानी थे, वो ऐसी कुछ बातें करते हैं कि वो करते करते ज्ञानी बन जाते हैं। उस कहानी का भाव और आशय कुछ और था, पर हम आज कुछ और चर्चा करेंगे कि इस ब्राह्मण जीवन में भी हम में से ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो ज्ञान की यात्रा करते करते अज्ञान की यात्रा कर जाती है। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है ज्ञानी देखना हो तो कहां देखो, यहां, और महामूर्ख देखना हो तो यहां। तो आप सबसे अब पहले ये प्रश्न है कि इस ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा महामूर्ख कौन है, जो बाबा का हाथ छोड़कर माया की दुनिया में चले जाते हैं वो, और महामूर्ख कौन है, बाप क्या बनकर बाप की निंदा करते हैं। आज सुबह की मुरली में था गुरु का निंदक ठौर ना पाए, ठौर अर्थात बादशाही, दूसरी लाइन थी मुरली में। और इस ब्राह्मण जीवन में द ग्रेट फूल कौन है, बाप की निंदा करने वाले बताया, बाप का हाथ छोड़ देते हैं वो, और तीसरा जो अपने आप को महाज्ञानी समझते हैं, वाह, जो अपने आप को महाज्ञानी समझते हैं। भक्ति में कहावत है अज्ञान अंधकार है, परंतु ज्ञान महाअंधकार है। अज्ञान अंधकार है परंतु ज्ञान महाअंधकार है। यदि वो ज्ञान अहंकार पैदा करे, यदि वो ज्ञान ही अहंकार का कारण बन जाए, यदि व्यक्ति ज्ञान पाने के बाद घमंडी बन जाए, अहंकारी बन जाए, उदाहरण जैसे शास्त्रों में रावण का दिया हुआ है, रावण महापंडित था, महाज्ञानी था, परंतु फिर भी धीरे धीरे उसमें अहंकार आ गया और वो महामूर्ख बन गया। तो इस जीवन में जो अपने आप को थोड़ा ज्यादा होशियार समझते हैं, एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा कि कई बच्चे हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा ही होशियार समझते हैं, बाप को पढ़ाना सिखाते हैं, बाप को ही बताते हैं कि बाबा आपने इस मुरली में ऐसा कहा था इसलिए हमने ये किया, या आपके बाबा को ही बाबा की मुरली का रेफरेंस देके अपने कर्मों का जस्टिफिकेशन करते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कम समझदार भव। क्या वरदान दिया है बाबा ने? कम समझदार भव, ज्यादा समझदार मत बनना, ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट। और इस ब्राह्मण जीवन में कौन महामूर्ख है बताना चालू करो। जो बाबा का ज्ञान केवल अपने आप तक सीमित रखते हैं। अच्छा, और कौन? और जो पुरुषार्थ के लिए समझते अभी बहुत समय बाकी है वो, और जो भगवान को पहचान लिया, भगवान को समझ लिया, उसके बाद भी पुरुषार्थ नहीं करते, वही अपनी धीमी गति से चाल चालू है। अमृत वेला उठ लिया, थोड़ा बहुत कर लिया, मुरली क्लास चले गए, दिन भर में थोड़ा बहुत याद कर लिया, शाम को थोड़ा सा बैठ गए, थोड़ी सी मुरली पढ़ ली, ब्रह्मा भोजन खा लिया, रात को थोड़ी बहुत सेवा कर ली, दिन भर रात को याद करके सो गए। ये सब है साधारण पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? साधारण। कौन सा? सुबह अमृत वेला उठना, फिर मुरली क्लास जाना, मुरली सुनना, फिर याद में भोजन बनाना, ब्रह्मा भोजन खाना, थोड़ी बहुत आत्माओं की सेवा करना, शाम को योग करना, फिर भोजन याद में खाना और रात में याद करके सो जाना। ये है साधारण पुरुषार्थ। फिर तीव्र क्या है? रोज नया नया अनुभव, या फिर ये सारा जो है इसको डबल कर देना, ये तीव्र पुरुषार्थ है। ये तो कर ही रहे सब, खाली अमृत वेला उठना, कई सारे तो अमृत वेला उठते ही है, कितने सालों से रेगुलर है, चाहे कितने भी बजे सो जाए अपने आप आंख खुलती है उनकी। पर इसका मतलब ये नहीं है खाली उठ गए तो तीव्र पुरुषार्थी हो गए। अगर उस अमृत वेले में कोई नवीनता नहीं, यदि उस पुरुषार्थ में कोई नवीनता नहीं, तो वो साधारण पुरुषार्थ है। और कौन है ब्राह्मणों में महामूर्ख? ये सोचना कि मैं सर्वगुण संपन्न बन चुका हूं और कुछ सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानना, और जानकर भी गलती करता है। हाँ, बड़ा पावरफुल पॉइंट बता दिया माताजी। सब पता है पर जानकर भी गलती करना। और महामूर्ख किसके कहेंगे? श्रीमत की अवज्ञा करते हैं। और जो समझते हमने भगवान को जान लिया, भगवान के महावाक्य है, जिस दिन तुम अपने आप को जान लोगे उस दिन संपूर्ण बन जाओगे। एक दूसरी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, जिस दिन तुम बाप को पूर्ण रूप से जान लोगे तब संपूर्ण बन जाओगे। इसका मतलब अब तक जाना नहीं है। इसके लिए हर अव्यक्त मुरली में एक शब्द आता है, मुरली पूरी होती है एक शब्द आता है, समझा। समझा आता है ना? क्यों आता है? शायद समझा ही नहीं है, कुछ भी नहीं समझा, इसलिए शब्द आता है। पूरी मुरली चलती है फिर आता है समझा समझा समझा, क्योंकि बाबा को शायद पता है किसी को इतनी बड़ी सभा में से कुछ भी नहीं समझा, केवल ऐसे ऐसे कर रहे और ऐसे ऐसे खुश हो रहे, समझा किसी को कुछ भी नहीं। तो आज हम ऐसे 12 प्रकार के महामूर्ख देखेंगे। कितने प्रकार के हैं? 12। कहां से आ गए ये 12? ये अभी अभी तैयार किए दोपहर में। उस कहानी का शीर्षक था द ग्रेट फूल। जो कहानी हमने आपको सुनाई इवान टर्गेनियफ की, द ग्रेट फूल, टोटल उसमें 12 अक्षर है, TheGreatFool। सबसे पहला अक्षर है टी। वो आत्माएं बाप एक तरफ ताज तख्त और तिलक दे रहे हैं, वो छोड़कर माया का ताज तख्त और तिलक पहन रहे हैं, वो महामूर्ख है। कौन सा ताज, कौन सा तख्त और कौन सा तिलक? भगवान हमें विश्व की बादशाही का तिलक, विजय का तिलक दे रहे हैं। ताज कौन सा दे रहे हैं? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, विजय का तिलक। और तख्त कौन सा दे रहे हैं? दिल तख्त नशीन। भगवान कह रहा है कि ये मेरा हृदय है, इस हृदय सिंहासन पर तुम विराजमान हो जाओ। भगवान के हृदय का सिंहासन छोड़कर जो गंदगी में जाए और गटर में जाए और कीचड़ में जाए, वही महामूर्ख है। अर्थात भगवान के प्यार को छोड़कर किसी देहधारी के प्यार में जो फंसता है, वो महामूर्ख है। सत्यम शिवम सुंदरम, इस संसार में सत्य शिव के अतिरिक्त और ना कुछ सत्य है और ना कुछ सुंदर। परंतु उस परम सौंदर्य को छोड़कर, उस परम सत्य को छोड़कर, जो व्यक्ति भगवान को छोड़कर मनुष्य के पास जाए, मनुष्यों के से प्यार करे और मनुष्यों के प्यार में फंस जाए, उसे क्या कहेंगे? महामूर्ख। कौन कौन है, हाथ खड़ा करेंगे जरा? जिसको बाबा से ज्यादा मनुष्यों से प्यार है। बाइबल में एक जगह जीसस क्राइस्ट ने कहा है, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है एक जगह, ही हु लवेथ इज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी, ही हु लवेथ इज ब्रदर एंड सिस्टर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह कहता है, वो व्यक्ति जो अपने लौकिक मां बाप को मुझसे अधिक प्यार करता है, वो मेरे लायक ही नहीं है। वो व्यक्ति जो अपने लौकिक बहन और भाई को मेरे से अधिक प्यार करता है, वो मेरे लायक नहीं है। एक जगह ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना करार, बाइबल में लिखा है, भगवान उससे कह रहा है, भगवान उसमें कहते हैं, आई थाई गॉड एम अ जेलस गॉड, मैं जो कि तुम्हारा परमात्मा हूं बहुत ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, मेरे अतिरिक्त और किसी से प्यार मत करना। मैं कैसा हूं? ईर्ष्यालु हूं बहुत, ऐसा लिखा है। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, बाप है मिया और आत्माएं है बीवी, जब मियां को छोड़ के बीवी किसी और का हाथ पकड़ कर जाती है तो बाप को बहुत दुख होता है। तो महामूर्ख वो है जो भगवान के दिल तख्त को छोड़े और मनुष्यों के दिल तख्त को पकड़े। महामूर्ख वो है जो भगवान विजय का तिलक दे रहा है, वो तिलक न लेकर माया से बार बार हार खाए, पुराने संस्कार से बार बार हार खाए, विकारों से बार बार हार खाए, विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताज न पहनकर अपना कल्याण, अपने बच्चे का कल्याण और अपने परिवार के कल्याण में ही लगे है बस। ये भूल ही गए कि इस विश्व के प्रति भी हमारी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। संडे की मुरली, साक्षी दृष्टा हो जाओ तन से और मन से। मन के लिए बाबा ने कहा था, ये क्यों कहते हो मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, मेरा योग नहीं लगता, मेरे बच्चा, मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, उसकी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा ने प्रश्न पूछा था, क्या कभी ऐसा किसी ने कहा कि मेरे गांव के बुद्धि का ताला खोलो, मेरे देश के बुद्धि का ताला खोलो? किसी ने नहीं कहा। सीमित अपने ही जगत में फंसे हुए कूप मंडुक, वो मेंढक की कहानी सुनी है सबने। एक मेंढक एक कुएं में है। एक दिन एक समुद्र का मेंढक वहां आ जाता है, तो समुद्र के मेंढक से कुएं का मेंढक पूछता है, तुम कहां से आए हो? तो समुद्र का मेंढक कहता है, मैं समुद्र से आया हूं। तो कुएं का मेंढक कहता है, समुद्र कितना बड़ा है? तो कुएं का मेंढक, तो समुद्र का मेंढक कहता है, बहुत बड़ा है। कुएं का मेंढक पूछता है, कितना बड़ा? और एक छलांग लगाता है, यहां से वहां, इतना बड़ा समुद्र है? वो कहता, नहीं इतना नहीं, इससे बहुत बड़ा। फिर वो मेंढक एक बड़ी छलांग लगाता है कुएं में, इतना बड़ा है समुद्र? वो कहता, नहीं इससे बहुत बड़ा। फिर वो एक बहुत बड़ी छलांग लगाता है, कौन? कुएं वाला मेंढक, और पूछता है, क्या समुद्र इतना बड़ा है? तो समुद्र वाला मेंढक कहता है, नहीं नहीं तुम तो सोच ही नहीं सकते इतना बड़ा है, तुम तो एक कुएं में रहते हो बस। तो कुएं वाला मेंढक कहता है, जाओ यहां से, मेरा यही समुद्र है और ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा और कोई समुद्र नहीं है। तो ये जो प्रवृत्ति है, इसको कहा जाता है कूप मंडुक, कुएं का मेंढक, जो अपने ही पर घर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे रिश्तेदार, बस सारा जीवन इधर ही घूमते रहते हैं गोल गोल, और ना तो वो कभी संतुष्ट होते हैं ना हम। अपनी दृष्टि, विजन, एटीट्यूड ब्रॉड करना है, बढ़ाना है, विश्व के विषय में सोचना है, संसार के विषय में सोचना है, दूर की आत्माएं कितनी दुखी है, अशांत है, उनके विषय में सोचना है। तो महामूर्ख वो है जो ताज न पहने, तख्त पर न बैठे और तिलक न लगा दे। ये सबसे पहला महामूर्ख इस ब्राह्मण जीवन में। भगवान को पा लिया, भगवान को जान लिया, भगवान धरा पर आए हैं ये पता है, सारी अव्यक्त वाणियां सामने हैं, परंतु खाली है। टी, टी के बाद एच, एच अर्थात हीरे जैसी श्रीमत को छोड़कर मनमत और परमत पर जो चले वो है महामूर्ख। इस जीवन में सबसे बड़ी जो चीज हरेक को करनी है वो ये कि श्रीमत क्या है, मनमत क्या है और परमत क्या है, इसको छांटना, सेपरेट करना, ये श्रीमत है, ये मनमत है, ये परमत है। व्यक्ति यही नहीं समझ पाता है कि वो मनमत को ही श्रीमत समझता है, दूसरे जो मत देते हैं परमत उसको ही श्रीमत समझता है, और जैसे दूसरे संसार के लोग कहते हैं उसी तरह करते रहता है। जैसे कल भी सुना रहे थे कुमारियों की क्लास में कि एक बार शंकर जी और पार्वती जी अपने नंदी बैल के साथ निकल पड़ते हैं पैदल। नंदी बैल चल रहा है और शंकर जी और पार्वती जी है, तो जाते जाते लोग कहते हैं, इतना भी समझ नहीं है जब नंदी बैल है फिर भी पैदल जा रहे? तो शंकर जी सोचते हैं, बात तो सही है। तो शंकर जी और पार्वती जी दोनों ही बैल पर बैठ जाते हैं और चलने लगते हैं। दूसरी जगह पहुंचते हैं, लोग कहते हैं, अरे 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 अरे, कितने निर्दयी लोग हैं, वो जानवर कुछ बोलता नहीं इसलिए आराम से दोनों बैठ गए उसके ऊपर, जरा तो दया आनी चाहिए उस जानवर पर, मूक प्राणी बेचारा। तो उनको लगता है, शंकर जी को लगता है बात तो सही है। तो शंकर जी उतर जाते हैं, पार्वती बैठती है और आगे चलते हैं। आगे जाकर दूसरे लोग मिलते हैं, दूसरे गांव के, वो कहते कैसी स्त्री है, पति परमेश्वर, वो पैदल और खुद आराम से बैठी है। तो पार्वती जी को आत्मग्लानि होती है, तो वो कहती है कि मैं चलती हूं, आप बैठ जाओ। तो शंकर जी बैल पर बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लोग कहते हैं क्या यही पति है, अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, खुद आराम से बैठा है और पत्नी को पैदल चला रहा है, धर्म पत्नी। तो शंकर जी सोचते हैं अब क्या करें। तो वो उतरते हैं, तो शंकर जी बैल को दो पैर पकड़ते हैं और पीछे से पार्वती दो पैर पकड़ती है और पैर को उठाकर लेके जाते हैं दोनों। तो लोग कहते हैं कैसे मूर्ख लोग हैं, देखो चाहे हम जो भी करें, करें या न करें, दुनिया वाले कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, इसके लिए उनसे प्रभावित नहीं होना है। होली हंस अर्थात किसी से प्रभावित ना हो, आज का वरदान। तो एक तरफ श्रीमत है, दूसरी तरफ मनमत और तीसरी तरफ परमत। परमत के आधार पर स्वयं को बदलते रहना या मनमत से अपने आप को बदलते रहना। जो श्रीमत छोड़कर, हीरे तुल्य श्रीमत छोड़कर मनमत और परमत पर चले जाते हैं, वो कौन है? द ग्रेट फूल्स, द ग्रेट इडियट्स, महामूर्ख। शंकराचार्य ने लिखा है, आदि शंकराचार्य ने, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन, ये सब छोड़कर एक गोविंद का भजन कर। हे मूर्ख मन, अपने मन से बात कर रहे हैं। तो अपने आप से बात करनी है, क्या बात करेंगे? हे मूर्ख मन, कहां जा रहा है? श्रीमत छोड़कर कहां भटक रहा है? तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ? जो श्रीमत को छोड़ दे। टी एच ई, ई अर्थात एक का पाठ। इस जीवन में एक का पाठ पढ़ना होता है, एक से संबंध, एक से प्यार, एक की याद, एक के प्रति समर्पण भाव, एक में निश्चय, एक की याद, एक से बात, एक ही सब कुछ, एक बाप दूसरा न कोई। जो एक को छोड़कर अनेकों के पीछे जाते हैं वो महामूर्ख है। एक हाईवे है, राम इंटरनेशनल हाईवे, इसको छोड़कर जो गलियों में चले जाते हैं, भटक जाते हैं। साइकोलॉजी में एक शब्द है जिगजैगिंग, मनोविज्ञान में एक शब्द है जिगजैगिंग। जिगजैगिंग अर्थात एक व्यक्ति है जो अपना कुत्ता लेकर 5 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर? 5। परंतु जो कुत्ता है जो उसके साथ है वो 10 किलोमीटर चलता है। क्यों? क्या करता है? सही बोला, क्या करता है? व्यक्ति और कुत्ता दोनों 5 किलोमीटर का रास्ता है, परंतु व्यक्ति 5 किलोमीटर चला, कुत्ता 10, क्योंकि कभी इस गली में घुसता है, कभी उस गली में घुसता है, कभी इधर भोंक कर आता है, कभी इधर झगड़ा करके आता है, कभी पीछे जाता है, कभी आगे जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी गलियों में कोई ढक्कन देख के आता है, उसके नीचे क्या है, गलियों के कुत्ते के साथ भोंक भोंक करके आता है। इसके लिए कुत्ता कितना किलोमीटर चला? 10, और व्यक्ति चला 5। तो मन क्या करता है? जिगजैगिंग, इधर जाता है उधर जाता है, इधर जाता है उधर जाता है। इसके घर में क्या चालू है, उसके घर में क्या चालू है, इसकी बहू ने क्या किया, उसकी ननद ने क्या किया, हमारे घर में क्या हो रहा है वो छोड़कर बाजू के पड़ोसी के घर में क्या चालू है, किसकी बेटी किसके साथ भाग गई। जिगजैग, zigzagging, zigzag, zigzag, इधर उधर, उधर उधर, इधर उधर, उधर उधर। एक का पार्ट छोड़ के क्या करते हैं, अनेक, इधर बुद्धि, उधर बुद्धि, यहां बुद्धि, वहां बुद्धि, इसको देखेंगे, उसको देखेंगे, और सारा टाइम वेस्ट। तो ऐसे जो करते हैं एक कपाट छोड़कर, एक के प्रति समर्पण भाव नहीं, वो कौन है, महामूर्ख, टी एच ई। फिर है ग्रेट, जी आर ई ए टी, जी अर्थात गीत, भगवान का जो गीत है मुरली, उसको छोड़कर माया का जो गीत है, माया की जो लोरी है, माया का जो संगीत है, जो माया का संगीत सुनते हैं और माया का गीत सुनते हैं, वो महामूर्ख। मुरली का चिंतन करने के लिए, मुरली का मनन करने के लिए, मुरली का अध्ययन करने के लिए टाइम नहीं है, और बाकी सब चीजें करने के लिए टाइम है, उसकी आवाज सुनने के लिए टाइम है, उस गीत में रस है। सुबह भी बात कर रहे थे संसार के गीत, संगीत, म्यूजिक, बहुत सारा विस्तार है, रस है उसमें, कनरस। परंतु उस रस के पीछे इस ईश्वरीय रस को ना छोड़े, और जो ऐसा करे, भगवान के गीत को छोड़कर माया का गीत जो सुनने चले जाते हैं, भगवान का गीत कम अच्छा लगता है, माया का गीत ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों ज्यादा अच्छा लगता है? ज्यादा मेलोडियस कौन सा है, भगवान का गीत ज्यादा अच्छा है या माया का, या दोनों? दोनों किसको अच्छे लगते हैं, हाथ खड़ा करो। कभी ये भी सुनना, फिर शाम को, दोपहर को माया का गीत, शाम को फिर बाबा का गीत, अल्टरनेट चेंज, ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना, वो भी करना। तो माया का गीत सुनना अर्थात महामूर्ख बनना, माया का गीत, गीत के साथ में माया के मूवीज है, माया का सिनेमा है, माया का धारावाहिक है, सीरियल्स है, न्यूज है, स्पोर्ट्स है, क्रिकेट, किसको किसको अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा अच्छा, बिल्कुल एक भी मैच नहीं छोड़ते, जब तक क्रिकेट नहीं देख लेते चैन नहीं आता है। भारत पाकिस्तान की मैच, भगवान आ रहा है एक तरफ, भगवान तो आते रहेगा, मैच थोड़ी आएगी। देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, क्या कहेंगे? यह तो बहुत अच्छी अवस्था है, परंतु कोई कोई लोग पागल और दीवाने हैं उसके पीछे। अंतमति सो गति, क्रिकेट मैच चल रही है और उसी समय अगर शरीर छोड़ दिया तो, और हम एक्साइटमेंट में है कौन जीतेगा, भारत, और उसी समय अगर शरीर छूट गया तो किस अवस्था में शरीर छोड़कर जाएंगे? बाबा की याद रहेगी वहां। हमारे एक भाई थे, वो कहते थे हम टीवी भी देखते हैं और बाबा को याद भी करते हैं, नीचे देखते हैं बाबा को याद करते, ऊपर देखते हैं टीवी देखते, फिर नीचे देखते, फिर बाबा की याद में भोजन, ऊपर टीवी, फिर नीचे बाबा को याद और फिर टीवी, दोनों काम साथ साथ। गीत, संसार में असंख्य एंटरटेनमेंट है, उसका कोई एंड नहीं है। संसार में बहुत सारे धार्मिक धारावाहिक है, परंतु जो धार्मिक धारावाहिक है, जो राम और कृष्ण का पार्ट प्ले कर रहे हैं, उनका आध्यात्मिक स्टेटस क्या है, किस भावना से फिल्मों में काम कर रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए, किस लिए, नाम के लिए, पैसों के लिए? कभी एक गांव की एक कुमारी थी जिसने कोई कृष्ण का सीरियल देखा या फिल्म देखी, और वो इतना प्यार हो गया उस कृष्ण से, उसको इतना प्यार हो गया कि दीवानी हो गई उसकी, और सब कुछ छोड़कर मुंबई गई उससे मिलने, जिसने कृष्ण का एक्टिंग की थी, और देखा वो डिस्को, वो डांसिंग क्लब में डांस कर रहा है, बहुत दुख हुआ उसको। तो चौथा महामूर्ख है, भगवान के गीत को छोड़कर, भगवान की आवाज को छोड़कर, भगवान की मुरली को छोड़कर, संसार के गीत संगीत एंटरटेनमेंट मनोरंजन साधन इसके पीछे जो लगे उसे महामूर्ख कहेंगे। पांचवा आर, आर फॉर राजा, जो स्वयं के इंद्रियों का राजा न बनकर इंद्रियों का दास बन जाए, स्वराज्य अधिकारी न बनकर इंद्रियों के अधीन हो जाए, वो है महामूर्ख। बाबा ने कहा है दरबार लगाओ, चेक करो कौन सी इंद्रियों ने, कौन सी कर्मेंद्रियों ने धोखा दिया। आंखों ने धोखा दिया, वो सूरदास था जिसने अपनी आंख फोड़ दी। एक बार दैहिक दृष्टि हो गई तो आंख फोड़ दी। ऐसे महान भक्त संसार में हुए हैं, परंतु आंख फोड़ने से कुछ नहीं होता, वो दूसरी बात है। यहां तो मन की आंख की बात है। जो स्वयं के राजा नहीं है, मन बुद्धि संस्कार और इंद्रिय, पांच इंद्रिय तीन मंत्री, जो इसके राजा नहीं है वो महामूर्ख है। जिन्होंने स्वयं के मन को बुद्धि को संस्कारों को ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी है कि जो वश में रहे, अपनी इंद्रियों को छोड़ दिया है खुला। जैसे एक व्यक्ति है घोड़े पर बैठा हुआ है और तेज भाग रहा है, इतना तेज भाग रहा है, इतना तेज भाग रहा है, कोई व्यक्ति उसको पूछता है तुम कहां जा रहे हो, वो कहता है मुझे क्या पता, घोड़े से पूछो, क्योंकि घोड़ा मुझे ले जा रहा है। मन ऐसा ही घोड़ा है, हमें ले जा रहा है, कहां कहां ले जा रहा है हमें नहीं पता, कौन कौन से विचार, कौन कौन सी भावनाएं, कौन कौन से संस्कार दौड़ा रहा है, इमोशंस फीलिंग्स आर। उसके बाद ए, एकांत, ए फॉर एकांत और मौन। भगवान हमें कह रहा है मौन में रहो, एकांत में रहो, और हम सारा दिन भर बोल 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 बोल, आवाज 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 आवाज, जरा भी समय नहीं है कि जिस समय चुप है, अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप से बोल रहे हैं। जो आवाज की दुनिया में खो गए हैं वो अव्यक्त कैसे होंगे, अव्यक्त स्थिति का अनुभव कैसे करेंगे, उस आवाज से परे परम धाम का अनुभव कैसे करेंगे। तो कुछ समय सारी दिनचर्या में एकांत का निकालना है और मौन का निकालना है। कम से कम सुबह 8 बजे तक चुप रहना, फिर से शाम को हो सके तो वापस चुप। स्पीच को सिल्वर कहा गया है, क्या कहा गया है, सिल्वर, और साइलेंस को गोल्ड, और डायमंड किसको कहा है, स्पीच है सिल्वर, साइलेंस है गोल्ड, और डायमंड कंट्रोल्ड स्पीच, संयमित बोल अर्थात मौन से भी ऊपर है। जितना बोलना है उतना ही बोलना, वो है मौन और एकांत। जो इस मौन और एकांत को छोड़कर दिन रात भीड़ में और आवाज में खोए हुए हैं, उन्हें महामूर्खी कहना चाहिए। बाबा कह रहे हैं तुम्हें आवाज से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। क्या दिन भर बोल रहा है कोई व्यक्ति, वो परम धाम का अनुभव कर सकता है? नहीं हो सकता। तो जी आर ई ए टी, ए आकर्षण, सांसारिक, सांसारिक वस्तुओं के प्रति अभी तक आकर्षित है, संसार के वस्तुओं के पीछे जो लगा है वो कभी भगवान जो दे रहा है, भगवान कम आकर्षित कर रहा है और संसार की वस्तुएं ज्यादा आकर्षित कर रही है। सारी वस्तुएं, सारे साधन, सारे डिजिटल साधन, उसे महामूर्ख ही कहेंगे जो आकर्षित है कहां पर? साधनों में, वस्तुओं में, स्थूल चीजों में, संग्रह करने में, जमा करके रख रहे बस घर में। टी, टी अर्थात ट्रेजर्स, भगवान जो खजाने दे रहे हैं उन्हें अपने अंदर न भरने वाले अर्थात महामूर्ख। नौ प्रकार के खजाने भक्ति मार्ग में बताए हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, नव निधिया है। कितने खजाने हैं? नौ। भक्ति में नौ खजानों का गायन है। कौन से खजाने हैं वो? ज्ञान मार्ग में ज्ञान गुण शक्तियां तीन, और समय, और समय संकल्प, और श्वास और समय एक ही हो गया, पांच हो गए। ज्ञान गुण शक्तियां समय संकल्प पांच, और खुशी पवित्रता दुआएं और संतुष्टता, ऐसे ये नौ खजाने हैं। इन खजानों को छोड़कर, इन खजानों को अपने अंदर न भरकर संसार की, संसार के स्थूल खजाने, संसार की वेल्थ, धन के पीछे जो लगे हैं, धन धन धन। रशिया के और एक बहुत बड़े लेखक है लियो टॉलस्टॉय, उन्होंने एक बहुत सुंदर चीज बताई है, लिखी है। एक किसान है, थोड़ी सी जमीन है उसके पास, परंतु दुखी है क्योंकि कमी है बहुत सारी चीजों की। एक दिन एक सन्यासी उसके घर में आता है और कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुमको वहां जाना चाहिए, वो जो दूसरी जगह है वहां पर जमीन बहुत सस्ती है। तो उसके मन में लालच आता है, वो किसान रात भर सोचते रहता है क्या करूं क्या करूं, और सुबह होने तक ये सोचता है कि मैं इधर का सब बेचकर उस स्थान पर जाऊंगा जहां पर जमीन बहुत सस्ती है। तो वो सब कुछ बेचता है और सुबह रात भर प्रवास करके उस नए स्थान पर पहुंचता है, साइबेरिया, जहां पर जमीन बहुत सस्ती है। वहां जाने के बाद वो लोगों से पूछता है जमीन का भाव क्या है, तो लोग कहते हैं जमीन का भाव, यहां तो जमीन मुफ्त मिलती है, केवल एक ही शर्त है, सुबह से लेकर भागना पड़ेगा और जितना तुम भागोगे वो सारी जमीन तुम्हारी होगी, खाली एक ही शर्त है कि वापस उसी स्थान पर आ जाना जहां से भागना चालू किया। तो वो व्यक्ति रात भर सो नहीं पाता, सोचता है कितना भागूंगा कितना भागूंगा, सारी जमीन ले लूंगा भाग भाग कर। दूसरे दिन सुबह सुबह सारे गांव वाले खड़े हो जाते हैं, वो भी आ जाता है, एक लकीर खींच दी जाती है और उससे कहता है कि यहां से तुम अभी भागो और सूर्यास्त से पहले वापस आ जाना। तो वो भागना चालू करता है, उसको लगता है बहुत भागूंगा और सारी जमीन ले लूंगा। भागता है भागता है भागता है भागता है, भागते भागते उसे भूख लगती है, सोचता है खाना तो लेके आया हूं पर अगर खाना खाने रुक गया तो जमीन कम हो जाएगी, इसके लिए खाने को फेंक देता है, बाद में तो सारी उम्र भर बैठकर खाना ही खाना है। और भागने लगता है और हाफता है, और भागता है और भागता है और हाफता है और हाफता है। फिर उसको प्यास लगती है, पानी साथ में है, सोचता है पर पानी पीने अगर रुक गया तो जमीन कम हो जाएगी, इसलिए धीरे धीरे पानी फेंक देता है। बाद में पानी बहुत पी लेंगे जितना पीना है, और भागता है और भागता है। दोपहर हो जाती है, सूरज ऊपर आ जाता है, फिर सोचता है कि अभी वापस लौटना चाहिए क्योंकि पहुंचना भी है। पर जैसे ही लौटने जाता है, देखता है सामने की जो जमीन है बहुत सुंदर है, उपजाऊ। सोचता है थोड़ा सा भाग लेता हूं, यह जमीन इतनी मिल गई तो फिर लौट जाऊंगा। फिर और भागता है, दो बज जाते हैं। अब सोचता है अब तो लौटना ही चाहिए, नहीं तो पहुंचेंगे नहीं। और जैसे ही लौटने को करता है, देखता है सामने वाली जमीन बहुत हरी हरी जमीन है, बहुत अच्छी जमीन है। थोड़ा सा भाग लेता हूं फिर लौटूंगा। और भागता है भागता है, चार बज जाते, फिर तो सोचते हैं बस अभी तो लौटना ही है। और फिर लौटता है, इतना जोर से वापस भागता है भागता है भागता है भागता है, पर अभी तो जमीन तो वो गांव तो बहुत दूर है। और तेजी से भागता है, इतना तेजी से भागता है जो कभी नहीं भागा होगा। और देखता है कि सूरज डूब रहा है उधर, और अभी उसको दूर गांव के लोग दिखाई दे रहे हैं। परंतु भागता इतना जोर से भागता है, इतना जोर से भागता है। और जब कुछ फुट दूरी पर होता है, भागते 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 धड़ाम से गिरता है और मर जाता है। गांव के लोग कहते हैं एक पागल आज फिर मर गया, क्योंकि ऐसे रोज वहां आते हैं। हम कहां भाग रहे हैं? भगवान कहता है लौट चलो, मैं आया हूं तुमको लेने, हम भाग रहे हैं। भगवान कहते हैं लौटो, तो हम लौटने को करते हैं। और जैसे ही लौटने को करते हैं, सामने की जमीन बहुत अच्छी है, एक प्लॉट और मिल जाए, एक घर और बना लूं, एक अच्छी सी गाड़ी और आ जाए। भगवान आया है, कहता है घर चलने का समय है, लौटो। हम कहते हैं नहीं, जमीन बहुत अच्छी है, पहले जमीन ले लूंगा फिर लौटूंगा। संसार की वस्तुओं के पीछे जो पागल है, और भगवान जो नौ खजाने या अनगिनत खजाने दे रहे हैं उनको छोड़कर जो भाग रहे हैं, वो कौन है? महामूर्ख। FOOL, आठ हो गए, अभी चार बाकी है। F अर्थात भगवान कहता है बेफिक्र बादशाह बहो, परंतु ऐसा निश्चिंत जीवन छोड़कर जिसके जीवन में अब भी फिक्र है, चिंता है, वरीज है, टेंशन है, उनको क्या कहेंगे? ब्राह्मण जीवन अर्थात निश्चिंत जीवन। कुछ दिनों पहले वरदान था, विष्णु समान निश्चिंत आराम से लेटे हुए, कोई चिंता नहीं, भगवान मिल गया और क्या चाहिए। उसके बाद में भी चिंता फिक्र उदासी फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन। कौन कौन है जिसको बहुत चिंताएं हैं? हाथ खड़ा करना जरा। जो कहते हैं हम टॉप लिस्ट पर हैं, हम हमारे पास सबसे ज्यादा चिंताएं हैं। अच्छा, वो हाथ खड़ा करो जिसके पास कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत जीवन है। अरे बाप रे, इतने सारे जिनके पास कोई चिंता नहीं, जरा भी चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बिंदास्त, बेगमपुर के बादशाह। आप यहां क्या कर रहे हो? आपको तो सतयुग में होना चाहिए था। अभी जा रहे हैं, बहुत अच्छा। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात निश्चिंत जीवन। एक बहुत सुंदर गीत है, हम गाएंगे, हमारे पीछे आप गाना, ठीक है? तब तक विनोद भाई गीत को ढूंढ के रखो। मौजों के दिन, जोर से गाइए, मिलन की ये रातें बीते कभी ना, ये थम जाए हरदम, गर्वो हमारा बस जो चले तो हम रोक लेंगे दिन ये सुहाने हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे बाबा ये कितने प्यारे नजारे तू मात पिता बन साजन सखा बन वो प्यार लुटाता दुनिया से न्यारा आगे गीत सुना है सबने ये कैसा गीत है नशे वाला गीत है ना नशा है गीत में बहुत किसी माता ने गाया हुआ गीत है एक मूर्ति माता नाम की एक माता थी जिसने ये यज्ञ का बहुत पुराना गीत गाया हुआ है तेरे प्यार के आगे वो ताज फीका वो ताज फीका वो तख्त फीका अभी आगे गीत बजेगा थोड़ी देर के बाद तो आप सुनना और इस पर योग करना कहां थे हम एफ एफ अर्थात फिक्र से फारीग भगवान मिलने के बाद भी जीवन फिक्र से भरा है चिंताओं से भरा है दुखों से भरा है मुश्किलों से भरा है आनंद नहीं जीवन में तो उसको क्या कहेंगे महामूर्ख एफ उसके बाद ओ ओ अर्थात ओशन ऑफ वाइसेस भगवान मिलने के बाद भी जो विकारों के समुद्र में गोता लगाते हैं ओशन ऑफ वाइसेस वाइस अर्थात विकार ओशन अर्थात समुद्र परमात्म प्रेम का आनंद का सुख का सागर मिलने के बाद भी किसमें गोता लगा रहे किसमें डुबकी लगा रहे विकारों में डुबकी लगा रहे उनको क्या कहेंगे महामूर्ख सच्चित आनंद सागर है भगवान उस सच्चित आनंद को छोड़ विकारों के गटर में डुबकी लगाना खारे चैनल में डुबकी लगाना विषय वैतरणी नदी में डुबकी लगाना कुंभी पार्क नरक में डुबकी लगाना महामूर्ख है ओ एफ ओ अगला ओ अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी अर्थात चांस अवसर भगवान आया है और उसने एक अवसर दिया है फिर से स्वयं को सुधारने का फिर से स्वयं को अभूल बनाने का फिर से स्वयं को संपन्नता के मार्ग में स्थित करने का फिर से स्वयं को पतित से पावन बनाने का और वो अवसर प्राप्त होने के बाद भी जो इस अवसर को छोड़ दे उसे क्या कहेंगे महामूर्ख जो अवसर का लाभ न ले एफ डबल ओ एल लास्ट प्रकार का मूर्ख है एल एल अर्थात बहुत लेट जिन्होंने एडमिशन ली और उसके बाद भी लास्ट सो फास्ट नहीं जा रहे लास्ट आने के बाद भी फास्ट नहीं जा रहे उन्हें महामूर्ख ही कहेंगे स्कूल तो चालू हो गई जनवरी में हमने एडमिशन ली अप्रैल में एग्जाम है दिसंबर में तो बहुत फास्ट स्टडी करना पड़ेगा समय बहुत कम है इतने कम समय में गैलॉप करना पड़ेगा क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं आप ये नहीं कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस है बाबा कहेंगे मैंने इसके बारे में बता दिया है, 70s की मुरली में है, जाके देखो, 80s की मुरली में बता चुके हैं। तो ऐसे ये 12 प्रकार के महामूर्ख। अब ये देखना है इनमें से मैं कौन हूं, क्या देखेंगे मैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है मैं, तो बहुत अच्छा। यदि इन 12 में से मैं कोई भी नहीं, तो स्वयं को बहुत अपनी पीठ थपथपाना, ऐसे करो सब लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सलेंट, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट। बिल्कुल हम मूर्ख नहीं है, हम कौन है, इंटेलिजेंट है। तो किसको शाबाशी देनी है, खुद ही को, बहुत बढ़िया, वाह वाह, वारे मैं। सब लोग कहेंगे एक बार, वारे मैं, वारे मैं, मेरी तो बहुत ही कमाल है। क्या है, बोलेंगे सब, वाह रे मैं, क्या बात है, मेरी तो बहुत ही कमाल है। तो इस तरह से स्वयं को नशे में लाना है। ओम शांति।